योग साधना की परंपरा। योग की यह साधना दीर्घ काल से चली आ रही थी, वह एकाएक नहीं आ गई। बुद्ध किसी ऐसे तत्व को नहीं मानते थे जो सब समय बना रहता हो, शाश्वत हो। उनके मत से आत्मा नामक कोई ऐसा तत्व नहीं है जो सदा बना रहेगा। अश्वघोष ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर इस बात को समझाया है। जैसे जब दीपक बुझ जाता है, तब न तो वह पृथ्वी में घुस जाता है, न अंतरिक्ष में समा जाता है, न इस दिशा में जाता है और न उस दिशा में जाता है। तेल का क्षय हो जाने के कारण केवल वह शांति को प्राप्त करता है। उसी प्रकार पुण्यात्मा व्यक्ति जब निर्वाण को प्राप्त होता है, तो न तो वह पृथ्वी में जाता है, न अंतरिक्ष में, न दिशा में और न विदिशा में। क्लेशों का क्षय होने से वह केवल शांति पा जाता है। दीपो यथा निवृत्तम अभ्युपेतो नैवावनी गच्छति नान्तरिक्षम्। दिशम न कांचिद विदिशम न कांचिद स्नेह क्षयात् केवलमेति शान्तिम्। एवं कृति निवृत्तिम अभ्युपेतो नैवावनिम गच्छति नान्तरिक्षम् दिशम न कांचिद विदिशम न कांचिद क्लेश क्षयात् त्वकेवलमेति शान्तिम्। इस प्रकार इस शरीर में जो चेतन दिलाने वाला तत्व है, वह तभी तक संसार प्रपंच में पड़ा हुआ है जब तक उसके क्लेशों का क्षय नहीं हो जाता। जगत वस्तुतः दुख रूप है, इससे छुटकारा पाना ही परम काम्य वस्तु है। छुटकारा मिल जाने के बाद छोटा हुआ पदार्थ चेर काल तक बना रहता है या नहीं, यह व्यर्थ का प्रश्न है। भारतवर्ष में दीर्घ काल से ऐसी साधना चली आ रही है जिसमें इस जगत का दुख रूप माना गया है और उससे छुटकारा मुक्ति पाने को मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य या पुरुषार्थ माना गया है। अधिकांश साधनाएं यह विश्वास करती थीं कि छुटकारा वस्तुतः किसी ऐसे पदार्थ का होता है जो छुटकारे के बाद बना रहता है, शाश्वत होता है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराना योग मत कुछ इसी प्रकार का था। सांख्य मत में बहुत पुराना है। योग का और सांख्य का तत्ववाद एक ही है। पातंजल योग में ईश्वर को ही माना गया है, इसलिए सांख्य मत से जिसमें पुरुष अनेक माने गए हैं पर ईश्वर की चर्चा नहीं है, शेषवत सांख्य कह दिया जाता है। कपिल कृत कहे जाने वाले सांख्य सूत्र परवर्ती हैं। सांख्य का तत्ववाद ख्यापक पुराना ग्रंथ ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका बताई गई है। पतंजलि ने योग मत और साधना को क्रमबद्ध दर्शन का रूप दिया था। उनका तत्ववाद सांख्य से बहुत भिन्न नहीं। बहुत प्राचीन काल से लोग सांख्य और योग का अभेद स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि केवल बाल बुद्धि के लोग ही सांख्य और योग को अलग अलग समझते हैं, पंडित लोग ऐसा नहीं मानते। सांख्य तत्ववाद का नाम है और योग उसकी प्रक्रिया। पतंजलि ने कब योग शास्त्र लिखा था कुछ विवाद का विषय बन गया है। साधारण प्रसिद्धि यह है कि पतंजलि नाग थे और तीन शास्त्रों के कर्ता थे, व्याकरण महाभाष्य, पातंजल योग सूत्र और संहिता। उन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन करके चित्त के, व्याकरण शास्त्र की रचना करके वाक के और चिकित्सा शास्त्र की रचना करके शरीर के मल को दूर किया था। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदिकेन। यदि यह सत्य है कि ये तीनों शास्त्र एक ही नाग मुनि की रचना है, तो कहना पड़ेगा कि वह अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इनमें से किसी एक शास्त्र के रचयिता को भी अवतारी पुरुष कहा जा सकता है। पतंजलि ने योग शास्त्र को बहुत ही युक्ति संगत और क्रमबद्ध दर्शन का रूप दिया है। कुछ लोग इन सूत्रों में छड़ित विज्ञानवाद की आलोचना देखकर यह मानने लगे हैं कि योग सूत्र नागार्जुन के बाद अर्थात ईसा की तीसरी शताब्दी के पूर्वाधार्ध में रचा गया था। छड़ित विज्ञानवादियों का प्रमुख सूत्र ग्रंथ लंकावतार सूत्र है, जिसमें नागार्जुन की चर्चा है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि लंकावतार सूत्र से भी नागार्जुन का समय पुराना है। इस प्रकार पतंजलि को तीसरी शताब्दी में घसीटना बहुत अधिक युक्ति संगत नहीं है, फिर भी इस मत का यहाँ उल्लेख कर देना उचित समझा गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से भी किसी किसी पंडित ने तीनों पतंजलियों की अभिन्नता में संदेह प्रकट किया है। जो हो, पतंजलि नामक आचार्य ने सन ईसवी के आरंभ होने के कुछ इधर उधर योग सूत्रों की रचना की थी। ये सूत्र योग मार्ग के क्रमबद्ध तत्ववाद और साधना मार्ग का बहुत ही सुंदर परिचय देते हैं। जो कार्य आचार्य रामानुज ने भक्ति के आधारभूत सिद्धांतों के लिए कोई हजार सवा हजार वर्ष बाद किया, वही योग के लिए पतंजलि ने किया। इसके पूर्व यह मतवाद साधना प्रक्रिया के रूप में विभिन्न संप्रदायों में प्रचलित था। वह धर्म साधना अधिक और क्रमबद्ध दर्शन कम था। संभवतः सांख्य भी ईश्वर कृष्ण के पहले इसी प्रकार नाना धर्म ग्रंथों और आख्यान ग्रंथों में बिखरा पड़ा था। धर्म साधना को क्रमबद्ध दर्शन का अधिक और क्रमबद्ध दर्शन कम कहते हैं। धर्म साधना को क्रमबद्ध दर्शन का रूप इस देश में आज से कोई 2000 वर्ष पहले मिलने लगा था। ऐसा क्यों हुआ? कुछ ऐसे सामाजिक और अन्य कारण अवश्य रहे, जिनके फलस्वरूप धर्म साधना क्रमबद्ध दर्शन का रूप बन गई, या दूसरे शब्दों में कहें तो साधारण जीवन से छनकर ऊपरले स्तर के बुद्धि वृत्ति के लोगों की चीज बन गई। सामाजिक विचारों में कुछ ऐसा मंथन जरूर हुआ कि तत्ववाद का मक्खन ऊपर उठ गया। जो तत्ववाद संपूर्ण जीवन में व्याप्त था, वह केवल बौद्धिक विवेचना का विषय बन गया। वह कोई नई बात नहीं है। 11वीं से 14वीं शताब्दी तक भक्ति के तत्ववाद का नवनीत इस प्रकार ऊपर उठता रहा और विविध भक्ति संप्रदायों की धर्म साधना के मेरुदंड रूप तत्ववाद क्रमबद्ध दर्शन का धारण करते रहे। 18वीं शताब्दी के अंतर में कबीर पंथियों ने भी क्रमबद्ध दर्शन पाने का प्रयासी हुआ, पर लोक चित्त से वह इतना उलझा हुआ था कि उसका तत्ववाद का प्रयास बहुत सफल नहीं हो सका। महाप्रभु चैतन्य देव के तिरोधान के बहुत थोड़े अरसे में ही उनका संप्रदाय अचिंत्य भेदाभेद नामक अभिनव दर्शन का अधिकारी हुआ। कहते हैं कि वृंदावन के वैष्णव पंडितों को किसी भी सभा में जब ललकारा गया कि चैतन्य मत का कोई अपना वाद या भाष्य हो तो बताओ, तो बलदेव विद्याभूषण ने एक दिन की मुहलत लेकर रातों रात भाष्य तैयार कर दिया। इस कहानी से इतना तो पता चल ही जाता है कि इस प्रकार का प्रयत्न बुद्धिजीवियों और अभिजात लोगों की स्वीकृति पाने के उद्देश्य से किया गया होगा। धर्म ग्रंथों के आख्यानों से मुख्य मुख्य सिद्धांतों का संकलन करके जब क्रमबद्ध दर्शन का रूप दिया जाता है, तो उसके मूल में अभिजात वर्ग का स्वीकृत लाभ एक प्रधान कारण होता है। ऐसा जान पड़ता है कि ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में वैदिक और अवैदिक मतों का बड़ा घोर मंथन हुआ था और भिन्न भिन्न साधना मार्गों के अनुयायियों को अपने अपने मत को क्रमबद्ध दर्शन का रूप देने की आवश्यकता पड़ी थी। विविध सूत्र ग्रंथों ने उस आवश्यकता की पूर्ति की, साथ ही ऊपर ऊपर तत्ववाद के बौद्धिक विवेचन का विषय हो जाने पर भी कम बुद्धि वृत्ति के लोग तत्ववाद विहित साधना प्रणाली से या तत्ववाद के आख्यानात्मक धर्म ग्रंथों से अपना काम चलाते रहे। विविध पुराणों में विभिन्न दर्शन के रूप प्राप्त होते हैं, वैदिक मतों के भी और बौद्ध जैन और अवैदिक मतों के भी। इन पुराणों और आख्यान ग्रंथों की संख्या बहुत है। प्रायः सभी सूत्र ग्रंथ अपने पुराने पुरस्कर्ताओं का उल्लेख करते हैं। यहाँ प्रकृति यह है कि योग दर्शन ने जब एक निश्चित बौद्धिक तत्ववाद का रूप धारण किया, तो लोक जीवन में उसका केवल प्रक्रिया प्रधान एक रूप रह गया होगा, जो कम बुद्धि वृत्ति के साधुओं में प्रचलित होगा। गृहस्थों के लिए लिखे गए पुराण और आख्यान ग्रंथों में उसका वह पुराना रूप भी रह गया होगा, जो तत्ववाद और भक्ति तथा धर्म साधना के मिश्रित रूप हुआ करते हैं। पातंजल दर्शन बहुत ही सूक्ष्म और जटिल बौद्धिक शास्त्र के रूप में प्राप्त होता है। वह साधारण जनता का नहीं बल्कि ऊपरले स्तर के बुद्ध वृत्ति के लोगों का दर्शन है। कम बुद्धि वृत्ति के लोगों में योग मत का प्रक्रिया प्रधान रूप बराबर बना रहा और मध्य युग में जब संस्कृत की चर्चा अधिकाधिक जनसंपर्क से दूर पड़ती गई, उसने फिर देशी भाषाओं के माध्यम से आत्म प्रकाश किया। संस्कृत में भी इस युग में पुस्तकें लिखी गईं, पर वे भी प्रधान रूप से प्रक्रिया प्रधान ही थी। पातंजल योग दर्शन में समूचे शास्त्रार्थ को चार भागों में विभक्त करके समझाया गया। प्रथम हेय, दूसरा हेय हेतु, तीसरा हेय हान और चौथा हानोपाय। जितने दुख हैं और उन दुखों को उत्पन्न करने वाले जितने पदार्थ हैं, वे सभी हेय अर्थात त्याग योग्य हैं। फिर भी मनुष्य इन दुखों को स्वीकार करता है, क्या कारण है? शास्त्र ने इसका कारण अविद्या बताया है। वस्तुतः किसी वस्तु का यथार्थ रूप, गुण और परिणाम न जानने के कारण ही जीव उसे गलत समझता है। इस गलती के कारण ही स्वयं अपने आप को उसका भोगता, भोग्य भाव रूप संयोग है, वही हेय हेतु है। इस संयोग का कारण अविद्या या गलत ढंग की जानकारी है, इसलिए वास्तविक हेय हेतु अविद्या को ही समझना चाहिए। अविद्या न हो तो जीव हेय वस्तुओं को स्वीकार ही न करे और हेय को स्वीकार न करे तो उसे दुख भी न हो। इसलिए प्रधान समस्या है इस हेय हेतु से छुटकारा पाना। कैसे छुटकारा मिले? स्पष्ट ही गलत जानकारी से बचने का उपाय है सही जानकारी, ठीक ज्ञान। सही जानकारी अर्थात विवेक ख्याति। जब जीव जान जाता है कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, चित्त वस्तु क्या है और जड़ वस्तु क्या है, दुख क्या है और दुख से विरति क्या है, जब सत और असत का ठीक ठीक विवेक करने लगता है, तभी अविद्या उच्छिन्न होती है। अविद्या के उच्छिन्न से दुख की अत्यंतिक निवृत्ति होती है। यही हेय हान है, यही योग का चरम प्रतिपाद्य है और इसी का उपाय बताना शास्त्र का उद्देश्य है। हे हान का उपाय ही हानोपाय है। शास्त्र ने विवेक ख्याति के उपाय का विस्तृत विवेचन किया है। जब तक विवेक ख्याति नहीं हो जाती, तब तक विविध योगांगों का अनुष्ठान करना पड़ता है। योगांग 8 है, 5 बहिरंग और 3 अंतरंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग है और ध्यान, धारणा, समाधि, ये 3 अंतरंग हैं। इन्हीं 8 के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध होता है। समाधि सिद्ध होने से योगी चरम सिद्धि पा जाता है। योग ग्रंथों में इसके उपाय और महिमा दोनों की बहुत अधिक चर्चा है, परंतु मध्यकाल में लोक भाषाओं में जो योग संबंधी पुस्तकें लिखी गईं, उनमें हेय, हेय हेतु, हेय हान आदि की इतनी सूक्ष्म विवेचना नहीं की गई। मुश्किल से भूले भटके इन शब्दों का स्मरण किया गया होगा। संस्कृत में भी इस काल में जो हठ योग की पुस्तकें लिखी गई हैं, वे केवल प्रक्रिया ग्रंथ ही हैं। इनमें आसन, प्राणायाम आदि के अनेक भेदों और विधियों की प्रचुर चर्चा है। ध्यान धारणा की भी चर्चा है, पर यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि इनसे विवेक ख्याति इस प्रकार होती है और होने से अविद्या क्यों दूर होती है। पातंजल योग दर्शन विचार प्रधान दर्शन ग्रंथ है, जबकि मध्य युग के हठ योग वाले ग्रंथ प्रक्रिया प्रधान, परंतु ज्ञान मार्ग का प्रभाव उन पर है। यदि उत्तर मध्यकालीन योग ग्रंथों का विश्लेषण किया जाए तो बाह्य योगांगों पर उनका अध्ययन अधिक केंद्रित मिलेगा, फिर इन 5 पर समान रूप से जोर नहीं मिलेगा। पातंजल दर्शन ने बाहरी और भीतरी इंद्रियों को संयमन अर्थात वृत्ति संकोचन को यम कहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। गोरखनाथ की लिखी बताई जाने वाली लोक भाषा की पुस्तकों में किसी न किसी रूप में ये बातें आ जाती हैं। पर स्वर उनका नैतिक है। गोरख बानी में ब्रह्मचर्य, मधुर भाषण, संयम और सत्य की महिमा इस प्रकार बताई गई है। यंद्रे का लड़बड़ा, जिभ्या का फूहड़ा, गोरस कहे ते परतसी चूहड़ा, काच कयति मुख का सती, सो सत्पुरुषो उत्तमो कथी। यद्यपि इनका स्वर नैतिक है, पर उन्हें योग साधना का आवश्यक कर्तव्य माना गया है। ज्ञान चर्चा अधिकतर कथनी प्रधान है। एक ही बात को कई प्रकार से घुमा फिराकर, धक्का मार बनाकर, आकर्षक रूप देने देकर कहने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। ब्रह्मचर्य पालन को स्त्री वर्जन, स्त्री निंदा आदि का रूप मिला। ब्रह्मचर्य का जीवन न बिता सकने को अत्यंत कठोर भाषा में स्मरण किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसे ससिया खस्सी नपुंसक तक कहा गया है और शिव और सती को भी इस लपेट में आ जाना पड़ता है। परवर्ती ग्रंथों में इस बात पर कुछ नहीं कहा गया कि ब्रह्मचर्य क्यों कर्तव्य है, केवल उसकी महिमा का वर्णन कर दिया गया है और उसके न पालन करने वालों की खबर ली गई है। रानी तज्ञान ससिया जीवे, पुरुष तज्ञाम नहीं नारी, कहे नाथ वे दोन्यू बिन से धोपा की असवारी। तो जुग रांड्या जोगे सुर ब्याह्या, शिव शक्ति सुफेरा, जा पद मंदिर पुरुष विलंब्या, वही मंदिर घर मेरा। इस प्रकार प्रत्येक यम का रूप उत्तरोत्तर कथनी प्रधान, कटु आलोचना प्रवण और कभी कभी खींच से भरी गाली गलौज के रूप में भी प्रकट हुआ। शास्त्र में इन यमों के विपरीत आचरण को वितर्क कहा गया है। इसका फल दुख और अज्ञान है। युक्ति पूर्वक बताया गया है कि क्यों यमों का पालन कर्तव्य है और क्यों वितर्क से बचना आवश्यक है। इन वितर्कों के दमन और संयम की उपलब्धि के लिए शास्त्रकार ने 5 प्रकार के नियम बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर का ध्यान। परवर्ती लोक भाषा के ग्रंथों में इन सब की कुछ न कुछ चर्चा है, पर स्वर नैतिक है और भाषा में कभी कभी इनके विरुद्ध आचरण वालों के प्रति क्रोध का स्वर भी मिल गया है। आसन और प्राणायाम मध्यकाल के योग ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान अधिकार करते हैं। आसन और प्राणायाम शरीर साध्य है, परंतु प्रत्याहार मानसिक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन बाहरी पदार्थों से इंद्रियों को हटाकर प्रत्याहत करके पहले अंतर्मुख करना पड़ता है। इस अवस्था में बाह्य नियमों के साथ इंद्रियों का कोई संपर्क नहीं होने से वे इंद्रिय गण चित्त का पूर्ण अनुकरण करते हैं। इस अवस्था का नाम है प्रत्याहार। शास्त्र में इन 5 को बहिरंग साधन इसलिए बताया गया है कि इन 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का कार्य सिद्धि से बाहरी संबंध है, परंतु धारणा, ध्यान, समाधि नामक योगांगों का कार्य सिद्धि से साक्षात संबंध है, इसीलिए उन्हें अंतरंग साधन कहा गया है। इन 3 को एक ही नाम संयम से अभिहित किया गया है। इनके पारस्परिक एकता दिखाना ही इस एक नाम देने का उद्देश्य है। वस्तुतः जब ध्यान, धारणा और समाधि एक ही विषय का आश्रय करके होते हैं, तभी योगांग कहे जा सकते हैं। एक के ध्यान, दूसरे की धारणा और तीसरे के समाधि को योग नहीं कहा जा सकता। नाना विषयों में लगे हुए विक्षिप्त चित्त को किसी एक ही विषय पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। धारणा से जब चित्त कुछ स्थिर हो जाता है, तब ध्येय वस्तु की एकाकार चिंता होती है और जब यह ध्यान निरंतर अभ्यास के कारण स्वरूप शून्य सा होकर ध्येय विषय के आकार के रूप में प्रतिभासित होता है, तो उसे समाधि कहा जाता है। शास्त्र ने सावधान कर दिया है कि वह अंतरंग और बहिरंग भेद केवल संप्रज्ञा समाधि के लिए है, असंप्रज्ञा समाधि के लिए तो सभी बहिरंग ही हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उत्तर मध्य काल में इन योगांगों को लोक भाषा में लिखने की परिपाटी दीर्घ काल से चली आती हुई परंपरा का अंतिम रूप है। यह परंपरा लोक भाषा में थी और लोक हित ही उसका प्रधान लक्ष्य था। धीरे धीरे उसका नैतिक स्वर ही प्रबल होता गया और साधनात्मक रूप मध्यम पड़ता गया। निर्गुणियों और निरंजनियों की वाणियों में इनकी यही नैतिक रूप बचा रह गया। मध्यकाल के साहित्य के विश्लेषण से इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि जहां संत साहित्य में प्रधान रूप से यह नैतिकता प्रधान स्वर ही जीवित रह सका, वहां विशुद्ध योग मार्गियों ने प्रक्रिया वालों रूप को ही कसकर पकड़ रखा। साहित्य में वह कमाया पर साहित्य को निरंतर प्रभावित करता रहा। उधर विवेक ख्याति पर जोर देने वाले संप्रदायों ने उसके ज्ञान मूलक अंश को ही कसकर पकड़ा। इस प्रकार एक ओर तो प्रक्रिया प्रधान योग मार्ग साधना विधि से ही चिपटता गया और दूसरी ओर मानस बुद्धि से विवेक ख्याति प्राप्त करने को सब कुछ मानने वाले अधिकाधिक कथनी प्रधान होते गए। कथनी और करनी ये दो मार्ग मध्य काल में बहुत स्पष्ट हो गए। गोरखनाथ ने करनी को दुख लभ्य या दुहेली कहा है और कथनी को सुख लभ्य या सुहेली कहा है। उपहास का पात्र और जो लोग करनी पर ध्यान न देकर कथनी को ही सब कुछ मान बैठते हैं, उन्हें यह कहकर उपहास पात्र माना है कि जिस मार्ग जिस प्रकार सुग्गा पढ़ता लिखता है पर बिल्ली उसे घर दबाती है, उसी प्रकार कथनी वाले पंडित को माया धर दबाती और उसकी पोथी हाथ में पड़ी ही रह जाती है। कहणी सुहेली रहणी दुहेली, कहणी रहणी बिन थोथी, पठ्या गुन्या सुआ विलाई, साया पंडित हाथ ही रह गई पोथी। कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि वह केवल कथनी करता है। दोनों ने दोनों पर कसकर आघात किया है और दोनों में बार बार सामंजस्य विधान का भी प्रयत्न होता रहा है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही कि संप्रदाय में कुछ लोग जब पढ़ लिख कर पंडित हो जाते थे, तब संप्रदाय के सिद्धांतों को संस्कृत बद्ध करके ऊपरले स्तर में जाने का प्रयत्न करते थे और इस प्रकार लोक भाषा की रचनाओं का सार छनकर ऊपर आ जाता था। यह भी होता था कि संस्कृत ग्रंथों की चुनी हुई बातें भाषा में ले आकर उनका तर्क युक्ति रहित सार भाग भाषा में आ जाता था, पर सब मिलाकर यह आंदोलन जनता का ही बना रहा। निर्गुण भक्ति मार्ग की आरंभिक अवस्था ज्ञान की कथनी वाले मार्गों की परंपरा का एक अंतिम रूप रही होगी। कबीर दादू आदि के नाम पर पाई जाने वाली वाणियों के विश्लेषण से इस नतीजे पर ही पहुंचाना संभव है। वस्तुतः इनकी साखियां 8 योगांगों के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही लिखी गई हैं। इन उपदेशों में ज्ञान प्रवण नैतिक स्वर ही प्रधान है, योग संबंधी स्वर गौण है। इसे ज्ञान प्रवण नैतिकता प्रधान योग मार्ग के खेत में भक्ति का बीज पड़ने से जो मनोहर लता उत्पन्न हुई, उसी का नाम निर्गुण भक्ति मार्ग है।